ओम मगना खिलनंदशा खिलनंजना शिलाकया चक्षुर उन्मिलिताम मेहर तस्माय श्री नमः. So today we are celebrating Vaishnava Diksha.
आज हम लोग जो वैष्णव दीक्षा समारोह है वो करने जा रहे हैं.
And there's two types of Vaishnava initiation going on today. One is called Hari Nam initiation, the other one is called Brahman initiation.
आज देखेंगे इस मंदिर में दो दीक्षा होने जा रहे हैं, वैष्णव दीक्षा, एक हरिनाम दीक्षा, दूसरा जो ब्राह्मण दीक्षा देने जा रहे हैं.
So before explaining what these two types of initiation are, I want to explain the purpose of undergoing initiation.
गुरु महाराज जी आज की कथा करने से पहले इसका गुण अर्थ बताने जा रहा है, इसका लाभ, इसका लक्ष्य क्या है.
Actually, there are two purposes. There's that is a place of ignorance and Krishna consciousness. Taking initiation and progressing in bhakti is a solution to the problems of the material world.
Guru Maharaj कहते हैं दो कारण हैं जो दीक्षा लेना चाहिए. पहला, हम जिस दुनिया में दुख से भरे हुए, अज्ञानता से भरे हुए, कृष्ण भावना में आने से सही तत्व को जानते हुए हमें बहुत सागर से पार हो सकते हैं.
Because initiation basically means to begin something, and after one begins something, begins the path of Krishna consciousness, then one is required. The goal is to take one ultimately at the time of leaving this body back to the spiritual world or to the Godhead.
लक्ष्य है कि जब हमें यह श्रम धाम, जो दिव्य धाम है, हमारा जहाँ से निवास है,
power one,
एक दूसरों को भक्ति के आंदोलन में ला सकते हैं.
So what is that spiritual world?
दिव्यलोक के मतलब क्या है? दिव्यलोक वो जगह है जहाँ स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं.
And everyone is serving Krishna with pure love and merit.
प्रेम से सभी लोग वहाँ सेवा प्रदान करते हैं.
And everyone is experiencing their real nature of eternity, bliss and knowledge.
और सभी लोग वहाँ पर अपने अनुभव करते हैं कि वो सत्य है, चित्त है.
And in this material world, we are experiencing the opposite.
लेकिन इस जगत में यहाँ तो विपरीत हम लोग अनुभव कर रहे हैं.
We are experiencing temporariness, we are experiencing ignorance, and we are experiencing misery.
यहाँ पर सच्चिदानंद नहीं है, यहाँ तो अनित्य है, यहाँ पर चित्त नहीं, अज्ञानता से भरा, आनंद बिल्कुल नहीं है, दुख में भरे हैं.
So Vaishnava has that as his goal to go back to the spiritual and to bring others with him.
जो वैष्णव रहते हैं अपना लक्ष्य बना देते भगवान को दिव्य धाम जाने का, और सभी जीवात्माओं को आकर्षित करते इस कृष्ण भावनामृत में.
And that's the purpose of initiation and taking up the process of Krishna consciousness.
दीक्षा का मतलब वही है और कृष्ण भावनामृत लेने का यही गुण अर्थ है.
So as far as the first initiation is concerned, that's called Harinam Diksha.
जहाँ तक पहला दीक्षा जो है, जिसको हरिनाम दीक्षा, जो आगे बैठे हैं ये लोग हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं.
That's the preliminary initiation.
ये शुरुआत है दीक्षा का.
Initiation one is making some promises and vowing to chant a certain number of rounds and promises not to do certain things.
तो भक्ति का शुरुआत हरिनाम दीक्षा है. ये लोग कसम खाएंगे कि कुछ वादे हम करेंगे भगवान के आगे आज जो निभाएंगे और 16 माला जप करेंगे.
So there are certain prohibited activities that are entangling us in this material world that bring us down to the mode of ignorance.
कुछ कुछ चीजें हैं जो वर्जित हैं, जिससे करने से हम और अज्ञानता में फंस जाते हैं. इसलिए इस दुनिया में जो वर्जित चीज है, ये लोग जो पहला दीक्षा ले हरे नाम, ये लोग कसम खाएंगे कि वो कदाचित नहीं करेंगे.
Those activities are sex, intoxication, meat eating and gambling.
गुरु महाराज जी चार पाप के बारे में वर्णन करने, ये चार पाप कदाचित न करना है, नमाज खाना है, न शराब पीना, न जुआ खेलना, न पराय स्त्री संघ या मर्द संघ करना.
Just let's take each one of them and we'll describe. For example, gambling. Look at what happened to Maharaj Yudhisthira when he gambled.
जुआ खेलने में हमारा शास्त्र में प्रमाण दिया गया, युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला था, उसका परिणाम बड़ा गंभीर निकला था.
He was gambling his wife, he was gambling his brothers, he was gambling his kingdom. And that's what gambling does to one's mind.
जुआ खेलोगे, युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को खो दिया, अपने बीवी को हार गया, अपने राजसभा सब हार गए थे.
And then consider our friend Ravan.
और सभी लोग का जो मित्र है रावण.
Ravan was attached to illicit sex life, and look what it did to him.
और वो पराय स्त्री का संग करना चाहता था, लंकापति रावण. परिणाम क्या हुआ?
And then, of course, you've all experienced here in Fiji what intoxication, addiction to kava, liquor, what it does to people.
और सभी लोग अनुभव किए, खासकर फिजी में नशा पान जब प्राणी करता है, उसका क्या नतीजा होता है?
And then perhaps the worst thing, that is eating meat, fish and eggs.
और सबसे खतरनाक कि जब प्राणी मांस खाता है.
Because this karmically is the heaviest thing.
क्योंकि मांस खाना जो उसका कर्म लगता है प्राणी वो नहीं समझ पाता.
Because when you harm another living entity, then you have to suffer that same harm yourself later on in the future.
जब हम कोई और दुख को हिंसा करते हैं, वही पीड़ा जब हमने हिंसा किया था, हमें दूसरा जन्म में लेना पड़ेगा.
For example, in the Vedic literatures, there's an injunction that if you want to eat meat, you can offer a goat to the goddess Kali.
अगर आप मांस खाना चाहते हो, तो धार्मिक रूप से खाइए. आप उस जानवर को, मांस को काली को देकर तब खाइए.
But when you're offering that meat, you have to recite the mantra, Mamsa Khadati, which means, in the next life, you will eat me.
लेकिन जब उस जानवर को वध करना, तो एक मंत्र बोल देना कि मैं तुझे खाने जा रहा हूँ, दूसरा जन्म में तुम मुझे खा ले.
So for those of you who are still eating goats or chicken, then in next life or many lives you will be chickens and goats.
जो लोग भेड़ा मुर्गी मछली शायद खाते होंगे, तो फिर आपके कई जन्म तक तो वही बनना पड़ेगा.
So therefore we give up these four activities that are prohibited for those who want to advance in Krishna consciousness. Because these four activities give heavy karma.
ये जो चार पाप है, ये बहुत गंभीर कर्म हमें लाभ देते हैं. तो इसको हम तुरंत क्यों त्याग कर दें? क्योंकि हमें प्रगति नहीं करने देगा भगवान के भक्ति में, इसलिए हम उसको वर्जित करते हैं.
And the reason you're suffering in this world, like legal problems, health problems, bad relationships, is because of bad karma.
आज जो हम लोग दुखी है, कुछ कुछ का कोर्ट कचहरी के काम हो रहा है, कुछ कुछ का रिश्ता संबंध सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि कुछ प्राणी अपने शरीर से दुखी है, रोगी रोग हो जाएगा. ये सब क्यों? पिछला जन्म के कर्म लगा है.
But the nice thing about chanting Hare Krishna is if you take up the chanting and give up the bad things, all your past karma is finished.
लेकिन भगवान का ये जो महामंत्र है, जपने से होगा क्या? ये करने से आपका जीवन शुद्ध होगा और पिछला जन्म के कर्म जो लगा है वो जलकर राख हो जाएगा.
Maybe you ate thousands of chickens in your past, but all that karma is finished just by chanting Hare Krishna. If you give up eating chicken,
आप हजार जन्मों में जो मुर्गी खाए हैं, आप सिर्फ ये महामंत्र जपोगे, वो सब पाप नष्ट हो जाएगा. लेकिन हाँ, उसके बाद में कदाचित चिकन नहीं खाना.
That's otherwise you will be a nice chicken in your next life.
तो दूसरा जन्म में बहुत सुंदर मुर्गी बन के घूमोगे.
And you get married to a nice rooster.
और फिर तुम्हारा जो विवाह है, एक मुर्गा के साथ किया जाएगा.
But even the animals, they're getting attached to their life, and they don't know that death is coming.
यहाँ तक भी जो जानवर लोग हैं, वो लोग अपने योनि में इतने अशक्ति कर चुके हैं, वो लोग भी भूल गए कि मृत्यु मेरा भी आने वाला है.
Just like one time, Lord Indra got cursed to become a pig.
एक बार स्वर्ग के जो राजा इंद्र, उसको शाप मिला कि तू सुअर बन जाएगा.
So he was down on this earth planet being a pig, and he was enjoying and thinking, this is the life.
और वो सुअर बनकर पृथ्वी में घूमने लगा. और क्या हुआ जानते हो? वो सोच रहा है कि मैं आनंद कर रहा हूँ, सुअर की योनि में कौन आनंद करेगा?
So then they wanted him back in the heavenly planets.
और वो स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वो सुअर बन के रहना चाहता.
So they sent a message, please come back to heaven.
और वहां से संदेशा आया कि आप वापस आइए.
And Indra said, I can't. I have so many responsibilities. I have my big wife and big children. And we all know that a pig is eats stool. I mean, it's very bad
one.
And so finally they had to arrange that the farmer killed the wife and the children of Indra, and then he decided now it's time to go back.
Aur jis jo kisan vyakti tha jab uske pati ko hatya kar diya bacha log ke tab isne soch liya ha ye dukhalam hai ki wapas lena chahiye.
So no one wants a life like that.
Koi aisa jeevan nahi chahta hai.
So those are the negative injunctions, and positively, we chant the Lord's holy names.
और जो सही रूप से हम भगवान के नाम जप करेंगे.
And the advantage of chanting the Lord's holy names, in addition to freeing us from all karma, is that the Lord Krishna is present in His holy names.
और इसका लाभ क्या है? मालिक के नाम जपने से सबसे बड़ा बात है कि कर्म से तो निकल जाएंगे. भगवान श्री कृष्ण अपने नाम में ही है.
नामचिंतामणि कृष्ण चैतन्य रासलीला विलक्षण नाम नाम नो. When one chants the Lord's names, one chants Krishna's names. Krishna is directly there.
गुरु महाराज ने श्लोक में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने नाम में ही प्रकट है. आप लेकर तो देखिए उसको अनुभव कर लो.
So those who are taking first initiation are promising to chant minimum of 16 rounds of the Japa Mala a day.
जितने लोग पहला दीक्षा ले रहे हैं, ये लोग कसम खा रहे हैं कि मैं 16 माला रोज नित जपूंगा जब तक मेरा मृत्यु नहीं हो जाए.
Actually, originally in Krishna consciousness, the vow was to chant 64 rounds a day.
वास्तविक में कृष्ण भावना में शुरुआत में तो 64 rounds था, 64 round.
But Srila Prabhupada, out of his causeless mercy, reduced it to 16 for us.
लेकिन श्रीला प्रभुपाद जो हमारा संस्था चापक है उसने दया करुणा करकर 16 माला ने कहा 16 माला ने जप करना चाहिए.
When Prabhupada first came to America, he told the devotees, you should chant 64 rounds a day.
श्रीला प्रभुपाद शुरुआत में जब अमेरिका गया गुरु महाराज कहते हैं सबको बताया 64 राउंड.
And what he said, and then he said,
32.
And then he said, impossible. And then Prabhupada said, 16, no less. And the reason people find it so difficult for chanting so many rounds is that they don't have a taste for chanting.
क्यों लोग 16 माला नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके स्वाद लगा ही नहीं है, उसको रस नहीं मिला है भगवान के नाम में.
But as you advance in Krishna consciousness, you will have so much a taste that you will be like Rupa Goswami, who prays for unlimited mouths, unlimited ears to hear the holy name for unlimited rounds.
आपको अगर वो स्वाद लग जाएगा तो भागवत ने जैसे रूपा गोस्वामी जी के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं तो आप भगवान से मांगोगे कि मुझे अनगिनत मुख दीजिए ताकि उस मुख से मैं परमात्मा के नाम का स्वाद ले सकूं.
Whenever it is ekadasi, I try to chant 64 rounds a day.
गुरु महाराज जब एकादशी रहते हैं हर एकादशी को वो 64 राउंड्स करते हैं.
एंड देन आई रियलाइज that's actually the standard, and once I've chanted 64 rounds, I just want to continue and go up higher and higher and higher.
Guru Maharaj कहते हैं जब मैं 64 राउंड करता हूँ तब पता लगता है कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए और फिर मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए और मैं और करने लगता हूँ.
Because that's really what we want to get to. We want to have nama ruchi.
यही हम जब संस्था में आते हैं हमारा प्रथम कार्य है कि वो नाम रुचि हो जाए मुझे.
And then, Kevalananda Kanda, you will always be happy.
और जिस प्राणी को नाम रुचि हो गया वो सदैव प्रसन्न रहेंगे आनंद में रहेंगे.
So we take a vow to chant minimum 16 rounds a day, because if we didn't take that vow, because we are in a diseased spiritual condition, we probably wouldn't chant any rounds.
और जब वही प्राणी नहीं जप कर पाएगा जो वो रोगी है जो बीमारिया है उसके स्वाद नहीं लगी भगवान के नाम तो रोगी लोग नहीं जप कर पाएंगे.
It's just like if one has jaundice, then sugar tastes very bad to them.
जो आदमी के कावर की बीमारी है ना उसकी मिश्री पानी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगी, कड़वा लगी.
So we have to force one to eat sugar or jaundice, and that's one of the cures.
लेकिन कावर की बीमारी छुट्टी कैसे? आपके मिश्री पानी जबरदस्ती एक पड़ी. उसी तरह हम सब भव रोगी है और परमात्मा के नाम मिश्री पानी एक पिए तो पड़ी.
So making promises establishes us on the platform of being human beings.
जब हम लोग कसम लेते वादा लेते तब तो हम मनुष्य कहते हैं.
For example, there is marriage in proper human culture.
जैसे जब हम लोग मनुष्य रहते हैं तो हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, सही रूप से संस्कार करते हैं, जैसे विवाह संस्कार.
And if people were not married, then there would be no reason to stay with one person or another person, and it would be simply like the animals.
और अगर विवाह संस्कार नहीं होता है तो फिर जानवर में कोई संस्कार होता है? विवाह संस्कार तो बिल्कुल नहीं होता है वहां.
So therefore it's necessary to make a promise to do certain things, and that keeps you on the human platform.
इसलिए हम लोग कुछ कसमें खाते वादा लेते हैं ताकि हम मनुष्य जो है मनुष्यता ही निभा सके.
I mean, for example, when I first joined the movement, I promised to chant 16 rounds every day, and there has not been even one day that I have failed to chant 16 rounds.
गुरु महाराज जब कृष्ण मानमृत में आया और उसने जब से कसम खाए अपने गुरु से कि मैं 16 माला जब कभी एक रोज ऐसा नहीं हुआ जो उसने माना नहीं किया.
Even though some days, in order to finish my rounds, I had to stay up till 11 o'clock or midnight, but every day I had to finish my rounds.
कभी कभी गुरु महाराज के 11 बज जाए 12 बज जाए रात लेकिन अपना 16 माला खत्म करकर तो वो विश्राम लेते.
And some days I was sick, so I would just lay on my back. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And I finished my rounds.
गुरु महाराज कभी कभी बीमार रहते हैं लेकिन वो फिर भी अपने पीठ के बल लग कर परमात्मा के नाम लेते हैं.
So that's a determination that the devotee should have.
ये दृढ़ता हर भक्तों में रहना चाहिए.
So in addition, in order to quickly make spiritual advancement, one should avoid the 10 offenses on chanting.
और कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए 10 नाम अपराध आप कदाचित मत करना.
And I'll mention them very, very quickly.
गुरु महाराज जी जल्दी जल्दी बताएंगे.
First offense is to blaspheme devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord.
जिन वरिष्ठ भक्त ने भगवत नाम प्रचार में अपना जीवन दिया है ऐसे भक्तों को निंदा करना.
One should respect and serve the Vaishnavas, then one makes very quick spiritual advancement.
जो प्राणी साधु संतों को भक्तों को सेवा करते हैं वो तुरंत प्रगति करने लगता है.
And if one offends the Vaishnavas, you even lose your material opulence.
और जो निरादर करता है भक्तों को निंदा करता है वो सब कुछ खो देता है, यहाँ तक उसका संसारी ऐश्वर्य जो कटोरा है सब खो जाएगा.
Everything becomes inauspicious, and when you offend a Vaishnava,
सब कुछ तुम्हारा अमंगल हो जाएगा जो प्राणी कोई भक्त का निंदा करता है.
So never criticize, never think ill, never do anything against the Vaishnava.
कभी कोई भक्त का निरादर मत करना, उनके बारे में बुरा नहीं सोचना और उनका बुरा कभी देखना ना सोचना.
So second offense is to consider the names of the demigods to be equal to or independent of the holy name of Lord Vishnu.
शिव देवताओं को भगवान के नाम के समान या स्वतंत्र समझना ही बहुत बड़ा अपराध है.
The demigods are all servants of Krishna.
जितने देवी देवताओं हैं सब भगवान के सेवक हैं.
They are not God.
वो भगवान नहीं है, भगवान के सेवक हैं.
So don't worry, if you serve Krishna, then you automatically serving everybody else, including the demigods. If you water the root of the tree, all the leaves of the tree get watered.
जड़ में पानी छोड़ने से सभी पत्तियों को मिल जाता है. भगवान कृष्ण की पूजा करने से सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है. आपको चिंता करने की आवश्यकता भी तो नहीं है.
Third offense to be avoided is to disobey the order of the spiritual master.
तीसरा नाम अपराध है कि गुरु के एक साधारण मनुष्य समझना और उसकी वाणी को निराधार करना.
So the spiritual master is speaking on behalf of Krishna, representing Krishna, and so we should take his instructions very seriously.
कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान मुझे कुछ बोलता नहीं. हर एक गुरु जो बोल रहा है वही भगवान बोल रहा है, उनके द्वारा तुम्हें बता रहा है, लेकिन तेरे मगज में नहीं हल रहा.
Next events to be avoided is to blaspheme Vedic literatures or literatures that have the same teaching as the Vedic literatures.
और चौथा नाम अपराध है वेद शास्त्रों को खंडन करना जिसमें दिव्य ज्ञान भरे हुए हैं.
Next event is to consider the glories of chanting Hare Krishna as being imagination.
और भगवत नाम को काल्पनिक समझना ये बहुत बड़ा अपराध है.
Next event is to give some mundane, contaminated, speculative interpretation about the holy name of the Lord.
छठवां अपराध है कि भगवत नाम में अर्थवाद के आरोप करना, अपना अर्थ लगाना. मुझे लग रहा है कि ये करने से ये मिलेगा.
There are bona fide interpretations of the holy name of the Lord, bona fide meanings, and I'll give you one right now.
गुरु महाराज कहते हैं भगवान के नाम जो है दिव्य है और वो देने जा रहे हैं.
One is that the word Krishna is composed of two syllables, Krish and Na.
जो शब्द कृष्ण है वो दो शब्दों से बना, एक कृष्ण और एक ना.
And the acharyas have described that the syllable Krish means to attract.
कृष्ण मतलब क्या है? आचार्य गण ने कहा है कि कृष्ण मतलब जो आकर्षित कर ले.
And Na means ananda or bliss.
और ना के मतलब आनंदा, दिव्य आनंद.
So when you chant Krishna's name purely, you're attracted to him and experience ecstasy.
आप पवित्र रूप से कृष्ण जी का नाम जपेंगे, तुरंत आप कृष्ण जी पर आकर्षित हो जाएंगे और दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे.
So that's a bona fide interpretation of the holy name given to us by the acharyas.
ये सच्चा और दिव्य विशेष बात है जो आचार्य ने हमें दिए.
And the next event to be avoided is to commit sinful activities of the strength of chanting.
सत्वन अपराध है कि भगवान के नाम जप करते हुए पाप करते रहना.
Just like I described previously, that if one chants the holy name, all of one's karma goes away.
जैसे गुरु महाराज ने कहा कोई पवित्र रूप से भगवान के नाम ले सब जन्मों का पाप नष्ट हो जाए.
But if you continue doing the same thing, it doesn't work.
लेकिन आप उसके बाद में फिर पाप करते रहो, फिर पाप करते रहो, तो वो ऐसा आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा.
Drink your kava and then chant Hare Krishna, Hare Krishna. It doesn't work.
बिजू के पास से वाइवना पीकर और फिर हरे कृष्णा जप करना, फिर जाकर उसके पास से खरीद कर पीकर फिर हरे कृष्णा जपना, कभी नहीं हुई.
Just like in some religions, they're allowed to confess once a week, and then they're free from sins once a week. And another religion is only once a year.
कुछ कुछ धर्म ऐसा है, रिलीजन नाम है, जहां पर जाकर हर हफ्ता आप जाकर अपने पापों को प्रायश्चित कर सकते हो. हर हफ्ता जाकर प्रायश्चित करो, हर हफ्ता प्रायश्चित. और कुछ कुछ बताया गया है रिलीजन ऐसा है कि साल में एक दफा जाकर सब प्रायश्चित कर लो.
But God is not a fool.
भगवान जो है मूर्ख नहीं है.
He knows that you're going to do the same nonsense and he's not going to forgive you.
भगवान ऐसा नहीं है कि तू अपन मनमानी अनुचित कार्य करते रहो और मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा.
Just like if you a little child does something bad and then he apologizes to his parents later on, the parents say, okay, you're forgiven.
जैसे आपके छोटा बच्चा है और कुछ बदमाशी कर दिया तो आप माता पिता है आप क्षमा कर दें.
And he does the same thing next week, the parents will say, okay, don't do it again, but you're forgiven.
दूसरा हफ्ता फिर वही गलती करी माता पिता से आपकी नहीं करना.
And if he does it the third week, watch out.
तो जब तीसरा हफ्ता वो फिर वही गलती करी तो मैया पापा बोले आप सावधान हो जाना
बेटा. He may get the paddle in his rear end.
उसके पीछे पीठ पर उसके थप्पड़ लगेगा.
So once all right, twice all right.
एक बार गलती किया चल गया, दो बार, तीसरा बार वही पाप.
Okay, next offense is to consider the chanting of Hare Krishna to be just like another ritual in Vedic literatures, like the Karma Kanda rituals.
अथवा अपराध है कि जो भगवत नाम को एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान सोचना कि इससे फलदायक प्रवृत्ति मारेंगे, ये न करेगा हमें ये फल मिल जाए, लड़की शादी हो जाए, लड़का नौकरी मिल जाए.
In fact, it's described that one chanting of Hare Krishna cannot even be compared to millions of Ashwamedha sacrifices.
एक भगवान का जो शुद्ध नाम है वो लाखों लाखों बताया गया अश्वमेध यज्ञ के बराबर नहीं
That's how powerful the holy name is.
आप अनुमान लगाइए कितना शक्तिशाली भगवान के नाम है
Okay, and next offense is to teach the glories of the Lord to those who are faithless.
नास्तिक व्यक्ति को भगवत नाम महिमा बताना ये भी अपराध है
Because you don't want to teach something to someone where they're going to commit offenses. You have to be careful.
आप उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहेंगे जो बारंबार वो अनुचित कार्य बोल रहा है तो ऐसा व्यक्ति को क्यों आप बताएं?
So when presenting Krishna consciousness, it's good to present it gradually to people.
इसलिए जब कृष्ण भावामृत का ज्ञान किसी को देते हैं आप धीरे धीरे उनको समझाएंगे
I remember there was one devotee who I knew quite well. He would always present a very heavy way of Krishna consciousness and people would commit offenses as a result. I'll give you an example.
Guru Maharaj कहते हैं एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ शिष्य है कि वो इतनी बड़ू से देते थे कि लोग जो बैठे हैं वो लोग तो फिर कृष्ण भानु को बिल्कुल नहीं पसंद करते
He would go out on Sankirtan and approach people who had never heard about Krishna before and quote a verse from the Bhagavatam. That you're like, he would say to them, you're like a hog, dog, camel, or an ass. Swabhidvaraha shukarai samstuta pashu pushu.
Guru Maharaj kehte, wo jab jaakar prachar karte the, bolte the ki tum Krishna ke baare mein nahi suni. Tum sukkar ho, tum kukkar ho, tum oont ho, tum khari ho, gadha ho, kutta ho. Aisa bolte the.
Now, it may have been true, but it's definitely offensive.
Sach hai, sach hai.
Just like when I first joined the movement, I told my parents that. I said to my father, you're going to become a dog in your next life. Surrender now. I don't want to tell you what happened that
time.
He actually called the psychiatrist. Okay, and the final offense is to not have to weep faithfully chanting the Lord's holy name and maintain material attachments, in spite of understanding so many instructions in the matter.
संसारिक आसक्ति बनाए रखना और ध्यानपूर्वक जपना करना भी बहुत बड़ा अपराध है
सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑफेंसिव टू हैव मटेरियल अटैचमेंट्स इट्स ऑफेंसिव टू नॉट ट्राई टू गेट रिड ऑफ
आपके पास संसारिक चीजें कोई समस्या नहीं है लेकिन आप उसका लगाव धरे हो ये
मटेरियल अटैचमेंट्स आर कॉजिंग अस पेन
और ये आसक्ति जो हम संसार में लगा रहे हैं यही हमें दुख देंगे अंत समय
So the more attachments we have, the more miserable we'll be.
जितना आसक्ति संसार में उतना दुखी रहेंगे.
And the more we give up the attachments, the more we'll have a taste for the chanting.
आसक्ति छोड़ दीजिए नहीं है वही आसक्ति छोड़ दीजिए बस इधर आसक्ति हो जाए.
And then the main thing is to chant Hare Krishna with love and attention.
सबसे गुड़ बात है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करना प्रेम से और ध्यान पूर्वक
Krishna loves you so much that he's been waiting in your heart for you to turn back to him for many millions and millions of lifetimes.
Krishna Bhagwan hum sabse itna prem karte hai ki janmo janmo se kitne janmo se wo hamare hriday mein baitha hai ki ye ab modega mere par.
And Krishna's pure devotees are so patient and they love you so much that we should reciprocate that love.
और कृष्ण के भक्त लोग जो हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि आप वो जो कृष्ण के साथ संबंध है वो समझ जाए
सो therefore, in order to understand how to reciprocate that love, we study Lord Chaitanya's teachings, the Shikshastra.
और भगवान के साथ जो हृदय बैठा उसके साथ कैसे हम वार्तालाप करें उसके लिए हमें जो चैतन्य महाप्रभु ने आठ अस्तिकम छोड़े उसको समझना पड़ेगा
सो दैट्स फर्स्ट इनिशिएशन एज फार एज Second, the Brahman initiation is concerned, it's a step further.
और जो लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं वो एक कदम आगे हैं.
And what it means is this: one is getting the opportunity to develop brahminical qualities.
और वो ब्राह्मण दीक्षा में यानी कि इसमें आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आप दिव्य गुण को धारण कर सके.
A Brahman is one, according to the Vedic literatures, who knows Brahman.
ब्राह्मण कौन है जो स्वयं भगवान को जानता है.
And we can know someone to be a Brahman not because they have a certain name.
कोई भगवान को जानता है इसके मतलब नहीं कि उसका नाम है तब वो भगवान को जानता है.
Or not because they're born in a Brahman family.
क्योंकि वो ब्राह्मण की कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण हो गया. हाँ जी.
But because they exhibit certain qualities.
क्योंकि ब्राह्मण इसलिए उसमें ब्राह्मण जैसा गुण है.
And Krishna lists these qualities in the Bhagavad Gita.
और भागवत गीता में कृष्ण भगवान ब्राह्मण के नौ गुण के बारे में वर्णन करते हैं.
He says you can know someone to be a Brahman if they are sama, first of all, they're equal poised in happiness and distress.
पहला गुण क्या है ब्राह्मण का? क्षमा है. हर समय सुख है दुख है गर्मी ठंडा एक समान रहता है. पहला गुण है ब्राह्मण का.
They're dama, which means basically tame or self-controlled.
और दमा मतलब सफल इंद्रिया को बस में कर चुका है.
Vachyo Vegam, Manasakrata Vegam, Jivo Vegam, Udurukhashta Vegam, they're able to control or tolerate the pushings of the senses and not give in to them.
जो इंद्रियाए में जो इच्छाएं उत्पन्न होते हैं वेग की तरह भागते हैं इधर उधर वो प्राणी अपनी इंद्रियाए को बस में कर लेता है.
For example, if someone is continually getting angry, they're probably not a Brahman.
एक व्यक्ति निरंतर गुस्सा में रहता है ब्राह्मण तो कभी नहीं बनता.
Just like Vishwamitra Muni, before he became Vishwamitra Muni, he was always getting angry. That's why he couldn't be a Brahman.
Vishwamitra, वो ब्राह्मण बनना चाहता, लेकिन वो हमेशा गुस्सा करता था, तो कैसे ब्राह्मण बनी?
He was fighting all the time with Vasishtha Muni.
हमेशा वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध करता था, लड़ाई करता था.
Finally, he was tested to see if he would get angry. That he had fasted for maybe, I think, 100 years. And the demigods came down as Brahmins and begged for food.
और क्या हुआ? 100 वर्ष के लिए उस तपस्या किया, लेकिन उधर से क्या देवी देवताओं ने ब्राह्मण के रूप में भोजन मांगने आए.
And he gave them his food and he was peaceful.
और वो उस समय सब कुछ देने के बाद में तब उसको जाकर शांति अनुभव किया.
Imagine if you were to fast for 1 week, 7 days.
आपको खाली 7 उसको उपवास करने के लिए.
And they prepared a nice big feast for you after 7 days.
7 रोज बाद आप कुछ नहीं खाया आपके लिए बड़ा सा भोगा बना.
And right when you were getting ready to touch the food, someone came and begged and said, "Give me your food."
और एकदम आप जा रहे हो खाने के लिए समझो रसगुल्ला तो कोई वही समय आ गया जी भोजन चाहिए.
Most of us would scream at the person.
काफी जन तो वही लगे गुस्सा जी.
But a Brahman has to be so equal poise. Okay, take some food.
लेकिन जो ब्राह्मण रहेगा वो तुरंत प्रणाम करेगा और अपना भोजन देगा.
So of course I'm not expecting that of all of you today, but that should be one of the goals.
गुरु महाराज के मैं आज नहीं चाहता हूँ कि सबको ये गुण धारण कर ले, लेकिन धीरे धीरे तो धारण करेंगे.
So, the next quality is tapa. A Brahman has to basically be accepting everything favorable for serving Krishna and rejecting everything unfavorable.
अब तीसरा गुण तपा है यानी कि जो कुछ भगवान के अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसको तुरंत हटाओ.
And the next quality is shocham, which means cleanliness.
और शौचम है यानी कि पवित्रता है.
Cleanliness means outside, bathing regularly, wearing clean clothes, inside by Yakshmarat Pudavikaksham, Savaya, Yantara, Shuchi, Shubhishna, Shubhishna, Shubhishna. Always remembering Krishna, keeping Krishna in your heart. Savaya Manat Krishna Padavindaya.
Bahar se nana snan karna chahiye aur swachh kapda pehna chahiye. Andar se, jaise humne mantra padhe the shuru mein, ki Bhagwan ko hamesha smaran karna, apne man ko Bhagwan ke charno mein dharna, आपका सदैव शुद्ध है.
अदर क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस,
ऑनेस्टी, सहनशीलता लाना,
cultivating spiritual knowledge on a regular basis, which means regular reading, especially Srila Prabhupada's books.
Divyan ke khoj mein rehna, hamesha Srila Prabhupada ji ke pustak padhna.
Being religious and regularly practicing the knowledge that you hear in Prabhupada's books.
Nastik mat rehna, astikam rehna, aur saaron mein sab dik baaton ko apne jeevan mein utaar lena.
If you're a Brahmin, you're supposed to be a Brahmin 24 hours a day.
अगर ब्राह्मण है तो 24 घंटा 2 घंटा करीब ब्राह्मण ही रहना.
It's not that you go to work as a Brahmin and then you come back and then you're on a lecture.
ऐसे नहीं कि जब आप काम पे जाते हो तो आप ब्राह्मण हैं और लौट के तो मंच बंद कर देते हैं.
One time I was attending a funeral here in Fiji, and the Brahmin came and did all the mantras for the funeral, and then he walked outside and was smoking.
एक बार एक गुरु महाराज कहते हैं फिजी में मैं आया था तो फिनल में गया था. एक ब्राह्मण आया, एक मंत्र मारा, इधर से उधर मंत्र मार रहा है और मंत्र मारने के बाद बाहर जाकर सिगरेट निकाला और फूंक रहा था.
And I said, why are you smoking if you're a Brahmin?
तो गुरु महाराज जी कहा आप ब्राह्मण हो, अभी उधर भीतर मंत्र मार रहे थे, तमाम क्यों पी रहे हो?
He said, I'm not working now, so there's no problem.
उसने कहा अभी अभी मैं ब्राह्मण का काम नहीं करता.
Like an actor.
जैसे एक नाटक करने वाला व्यक्ति रहता है.
Just like many of you have seen this movie, the Ramayan movie.
सभी लोग रामायण देखे होंगे.
So one time, the actor who played Lord Ram, he came to our temple.
एक बार वो एक्टर जो है आप सभी लोग जानते हो जो राम बना था वरुण गोविंद जी, वो मंदिर गया था श्री गुरुदेव.
And he was smoking a cigarette outside the temple.
और वो श्री राम प्रभु राम अपना राम जी बाहर ये टेम्पल के सिगरेट फूंक रहा.
And everybody said, Ram, why are you smoking a cigarette?
जितने लोग से प्रभावित हो गए थे वो उनका चरण पकड़ के कहने लगा प्रभु श्री राम आप तमाकू कब से पीने.
And he said, I'm just an actor, I'm not Ram anyway.
क्रोधित होकर कहा मैं सिर्फ एक नाटक कर रहा था, मैं राम नहीं हूँ.
सो यू डोंट वांट टू बी दैट टाइप ऑफ ब्राह्मण.
प्लीज आप सभी लोग ऐसा नाटक मत करना.
सो इफ वन डेवलप्स दोज क्वालिटीज एंड सर्व्स कृष्णा देन दे कैन एक्चुअली रेंडर वेरी इंटीमेट सर्विस टू द लॉर्ड.
अगर आप ये दिव्य गुण धारण कर ले तो आप श्री कृष्ण को बहुत नजदीक से सेवा प्रदान करेंगे.
They can do puja on the altar to the deities.
आप उस altar में चढ़कर भगवान जी को पूजा कर सकते हो.
They can do sacrifices.
आप ये यज्ञ कर सकते हो.
They can preach Krishna consciousness.
आप कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हो.
And best of all, they'll be very peaceful and happy.
और हमेशा आप शांति होंगे और सुख और आनंद का अनुभव करेंगे.
So this is the initiations we're doing today, and. Purpose is to help others and to become Krishna conscious yourselves.
Guru Maharaj कहते हैं मुख्य बात है कि कृष्ण भावना का आपसे मदद करें और अपने स्वयं कृष्ण भावना में हमेशा डूबा रहे.
Okay, so now we can give the names. Does everybody have a neck beat on here?
Yes.
Okay, so
Maharaj जी अब नाम देने जा रहे हैं. जरूर तो अब इनका नया नाम भी है और आप देख सकते हैं भगवान है तो जब उठेंगे वहां श्रील प्रभुपाद जी के दंडवत करेंगे, फिर जाएंगे भगवान के आगे दंडवत, फिर गुरु के आगे दंडवत और हाथ जोड़कर बैठना तो गुरु महाराज जी कुछ पूछेंगे आप बताना, तो फिर गुरु महाराज जी को माला पहनाना, कुछ दक्षिणा लाए हो दक्षिणा देते रहो और उसके बाद गुरुदेव आपको माला देंगे और गीत नाम देंगे.
ओके सो फर्स्ट सुष्मिता शुड कम अप.
पहला जो दीक्षा ले रहे हैं सुष्मिता जी जो है जानते हैं शायद के नाम से.
ऑफर बेसिस टू प्रभुपाद, ऑफर बेसिस टू द डीज एंड टू मायसेल्फ.
और गिरधारी जी और धानी का सत्री है और मेरे ख्याल से फॉर्म 7 में पढ़ रही है और अभी हाल ही में पूरे भारतवर्ष गए थे और पूरे भारतवर्ष का दर्शन भी किए, इतने छोटी उम्र पर पूरे इंडिया दर्शन कर लिए हैं और आज इनका सौभाग्य हुआ है राधा वृंदावन सुंदर मंदिर पर श्रीमद गुरुदेव के द्वारा वो दीक्षित हो सके और उनका आशीर्वाद मिल सके, उनका जीवन में जो लक्ष्य है और उसको प्राप्त कर सके. तो गिरधारी जो धानी है ये खड़े हो सकते हैं, आज उनका सुपुत्री दीक्षा ले सब देख सकते हैं, बहुत गिरधारी है.
सो सो माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर रेगुलर प्रिंसिपल्स. And how many rounds is it? Very nice. So you get the beads with your right hand. So she's taking a vow. Everyone's taking the initiation. She's taking the vow to chant 16 rounds followed by 4 even principles. You get the beads with your right hand. And I give you your spiritual name at the same time. Thank you. So your name now is Seva Nandi Devi Dasi. That's a name, of course, of Radharani, too. She takes pleasure in serving Krishna.
यानी जो राधारानी का नाम है जो कृष्ण के सेवा में आनंद लेती है इसलिए उनका नाम है सेवानंद देवी दासी की
रूपमणि
और रूपमणि जो है सब लोग जानते हैं माता जी तेविनी की है और वैसे माता जी एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड की है कृष्ण थी और भगवत मां भागवत जब किए थे तो जिस घर पर भागवत था तो वहां जगह नहीं रस हुए थे कहा करेगी तो उनके घर पर जाकर सोना पड़ा और वो माता जी फिर हम लोग को बेटा मानने लगा और फिर वही दिन से मास छोड़ दी लगभग 3-4 साल पहले की बात है और फिर धीरे धीरे वो जप करने लगी और भोग लगाने लगी और फिर अभी हाल ही गार्गा मुनि प्रभु आए थे तो उनके द्वारा जो IDC कोर्स है वो कोर्स भी कल इस फेब्रुवरी में सो आज हिज ग्रेस गार्गा मुनि नहीं है फिर भी वी आर सो मच थैंकफुल टू हिम तो माता जी ऑल द वे फ्रॉम फेब्रुवरी और इतना सुंदर नाम है रूपणी और इनके बेटा और बहुराई है वो लोग भी कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करने हैं
After her, the next one will be Nitesha.
My name is Nitesha.
After her, she could probably open the basis. Okay, so English? Or do they? Okay, you can ask her for any of this. So your name, be it with your right hand. Your name now is Rupa Manjari Devi Dasi. Rupa Manjari Devi Dasi ki jai.
Maataji, you can explain who that is. Maataji ke naam Rupa Manjari Devi Dasi. Ye Manjari log choti rehti hai, yahan nahi rehti. Ye sab gopiyon ko madad karti hai. आज से माता जी के नाम है इतना सुंदर नाम रूप मंजारी देवी दासी और सभी लोग काजल को जानती है काजल जी बहुत सुंदर मृदंगा प्लेयर है दिन भर मृदंगा बजाती है बहुत सुंदर गाती है बहुत सेवा करती है मंदिर में और आज गीता जी का परिवार सब शायद जी का कजन है सब दीक्षा ले रहे
हैं How many rounds have we done? 60 rounds. So your name now is, get these with your left hand, is Nittai Leela Devi Dasi. Nittai, like Lord Nityananda.
Asim ka naam hai Nittai. Mandir ka naam Nityananda Temple. Nittai Leela Devi Dasi. और गोपी जी रिक्शा ले रहे सभी लोग जानते हैं गोपी जी मेरे ख्याल से 2-3 साल से लगातार मंदिर आ रहे हैं और पूरा परिवर्तन ले रहे प्रगति करने के लिए हर संडे को मंगल आरती में रहते हैं गांव के वासी सो रहे तो उस समय गोपी जी मंगल आरती में रहते हैं इसलिए आज म्यूजिशियन है और आज उनका है कि गुरुदेव के द्वारा दीक्षा ले सके आज उनका जो साल भर का परिवर्तन है संडे संडे मंगल आरती वो उठाकर आया है कि वो दीक्षा ले सके
regulated So you get the beads with your right hand. And your name is Rama Vigraha. Form of Lord Ram. Or the deity of Lord Ram, too.
आज से अभी राम नाम आ रहा है ना, हम लोग राम विग्रह को देंगे, डीडीस को देंगे, राम विग्रह दास प्रभु की। राम विग्रह दास प्रभु की। हरे कृष्णा, अब हम लोग यज्ञ करेंगे। गुरु महाराज जी इस पे गायत्री देंगे, कुछ लोग ब्राह्मण ले रहे हैं तो उन सबको गायत्री देना है, जो विपुल है उनको जो नहीं दिया जाते हैं तो गुरु महाराज जी अपने गायत्री पर उसमें जप कर देंगे। तब ब्रजराज प्रभु जी और श्री निधि प्रभु जी उनको जो नहीं दिया जाएंगे, माताएं उनको जो नहीं दिया जाएंगे, गुरु महाराज जी उनको मंत्र देंगे। ये मंत्र जो है गायत्री जोश से नहीं बोला जाता है, अपने मन में खाली आप विश्वास करते हैं। गायत्री का मतलब है आपको एक गायत्री मदद करेगा ताकि आप भगवान के जो महामंत्र है आप वो गहराई समझे। ठीक है, तो हम लोग यज्ञ करने जा रहे हैं और सभी लोग साथ हो जाएंगे और साथ होते हुए हम सब मिलकर यज्ञ करेंगे। जितने लोग आए हैं सभी मंत्र बोलेंगे ताकि हम सभी लोग शुद्ध हो सकते।
समान धर्म यदेव हि विष्णुदेयं भाति गोविंदमादिपुरुष तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुष तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुष तमहं भजामि
गोविंदमादिपुरुष तमहं भजामि
ईश्वरे प्रभे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्वकारण कारण चिंतामणि प्रकार सर्वसुखोपवेक्ष लक्षाभिते सुसुरभिर विपालयंत लक्ष्मी सहस्र संब्रह्म सेन मानाः
गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि
कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि
चंद्रालसद्वनमालया वंशी रत्नागदं प्रणय केलिकानभिलाषं श्यामं त्रिभंगललितनियत प्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि
गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि
यस्यां सकलेन्द्र प्रीतिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयं चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदज्वाल विग्रहस्य पुरुषं तमं भजामि
गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि
आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविता भीष्टैर्भिरेव निजरूपतय कलाभि गोलोकाय निवसति अखिलात्मभूतो तमं भजामि
गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि
प्रेमञ्जनाचरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चित्तं गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि
गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि
अद्वैतमचूतमनादि अनंत रूपं मध्यं पुराण पुरुषं ಯೌವನಂ ಚ ವಿದೇಶ ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮ ಭಕ್ತೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ನಾನಾವತಾರ ಕ್ರೋಧ ಬುಧೇಶು ಕಿಂತು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸಂಭವ ಪ್ರಮಾಪುಮಾನಯೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಯಶ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವಿತ ಜಗದಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಶೇಷ ವಾಸುಧೂತಿ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಸ್ಕಾಲಮನಂತಮಶೇಷ ಭೂತ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಮಾಯಾ ಹಿ ಅಶ್ ಜಗದಂದ ಸ್ಥಾನಿ ಸೂತೆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಕದ್ಯಸ್ಯ ವೇದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸದ್ಮಲಂಬ ಪರಸದ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಸದ್ಮಾ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ನಿಜ ಧಾಮ್ನಿ ಕಲೇಶ ತಸ್ಯ ಮಹೇಶ ಹರಿ ಧಾಮಸು ತೇಸು ತೇಸು ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಶ್ಚಯ ವಿಹಿತಿಶ್ಚಯೇನ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಥಿತಿ ಫಲೇನ ಸಾಧನ ಶಕ್ತಿ ಏಕಾಚ್ಛಾಯೈ ವಯಸ್ಥಿವನಾನಿ ವಿವಾರತಿ ದುರ್ಜಾನ ರೂಪಮಪಿ ಯಶ್ಚೇತಸೇಸ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ
ವಿಶೇಷಯೋಗ ಸಂಜಾಯತೆ ನಾಯಿ ತಥಾ ಪದಗಸ್ತಿ ಹೇತು ಯಾ ಸಂಭೂತಿ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಮಾನವಂ ಯೋಗಂ ವಿನಿಧೇಯ ಕುಂಭೇ ನೃಗವೇತನಾಯ ಸಮಯಾಸ ಕನಾದಿರಾಜ ವಿಘ್ನಂತಿ ಹೇತು ಮಾಲಂ ಯಶ್ ಜಗತ್ ನಶ್ಯ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಚಕ್ಷು ಯೇಷ ಸವಿತಾ ಸಕ್ಲಾ ಗಹನಂ ರಾಜ ಸಮಸ್ತ ಸುರಮೂರ್ತಿ ಶೇಷ ತೇಜ ವಿಸಜನೈ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಂವೃತಿ ಕಾಲ ಚಕ್ರೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಸ್ವಸತಿ ಕರ್ಮದವಲಂಬೆಯ ಜೀವಂತಿ ಓಮ ವಿಲಾಜ ಜಗದಂದನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಂಸ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಇಂದ್ರಿಯಾಯ ಗೋಪಮದವೇಂದ್ರ ಮಹೋಸು ಕರ್ಮ ಬಂಧಾನ ರೂಪ ಪರ್ಣಮತನೋತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿ ಭಜಾನ್ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಅವಧಿ ಛೋಡೆಂಗೇ ಮಂಡಲ ಮೇ ದೇ ಸಕ್ತೆ ಚಾರ್ ಗೇಟ್ ಹೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷಾ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಬ್ರಜರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿ ಬ್ರಜರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇ ಸಾವು ಮೇ ರೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಕಲ ರಾತ್ರಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಉನ್ನ ಘರ ಪರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ರೂಪಿಣಿ ಜೀ ವೀ ಜಗನ್ ಮೇ ಬೈಠಿ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇ ರೇ ಪಾಸ್ ತೀನ್ ಲಡ್ಕನ್ ಹೈ ಸಬ್ ಆಯ್ ಹೇ ಬನವಾಸ ಲೋಕ ಹೈ
ಗಾಡಿ
श्रीनिधि प्रभु की
जय।
अब उसने श्रीनिधि प्रभु बन चुके हैं, ब्राह्मण है, दीक्षा ले चुके हैं। और सभी लोग जानते हैं ब्रजराज प्रभु जी अभी गुरुदेव से गायत्री मंत्र लिए हैं, तो आज उनका जो भगवान जी के आगे दीक्षा समारोह है। मनुष्य का तीन जन्म होता है, सोक्रा सवित्र यजनी। सोक्रा जो माता पिता के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें गर्भ नाम संस्कार नहीं होते तो शुद्ध रह जाता। फिर उसके बाद में सवित्र और तीसरा जन्म ये जो आज ब्रजराज प्रभु दिखा रहे, जिसको यजनी कहते हैं, जो वो जनई धारण करते हैं। और गुरु से हम सभी लोग मिलकर मंत्र बोलेंगे और भगवान विष्णु के मुखमंडल में आहुति छोड़ेंगे। जितने लोग आए हैं आप भी लाभ उठाइए, मंत्र बोलने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। साथ में हो जाएंगे
सरस्वती।